لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآله.
سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، أجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور نجات وہی پائیں گے جو خالی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہوگا، اور خالی عمل صالح نہیں، حق کی وصیت بھی ہوگی، صبر کی تلقین و تاکید بھی. اور دوسری آیت بھی اتنی ہی مشہور، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں جو دینا ہے اس دنیا میں دے دے، تو رب دے دیتا، لیکن وما لهم فی الآخرة من خلاق، پھر انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملتا. ومنهم، لیکن ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ چاہیے اور آخرت میں بھی، اور عذاب النار سے نجات. یہ آیت گرچہ حج کے احکامات کے درمیان آئی، لیکن بہرحال قیامت تک کے ہر جگہ کے ایک اصول کو بتا رہی. ان آیتوں کی تلاوت آج کی مجلس میں کیوں کی گئی؟ 1439 یا 1439 ہجری کے ایام عزا کے اس تیسرے عشرے سجادیہ کی نویں مجلس، اور کل آٹھویں مجلس میں جو بات جہاں تک پہنچی تھی، اسے ذرا سا ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ روک کر کہ زیادہ وضاحت کے ساتھ وہ آخری یعنی آنے والے کل کی مجلس میں بیان آئے گا، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے میں نے موضوع کو روکا ہے. آج بھی بات اسی کے حوالے سے آگے بڑھے گی، بلکہ جو لوگ آیتوں کی جانب متوجہ تھے، خاص طور پر وتواصوا بالصبر، اس کے حوالے سے ان کے ذہن میں کل رات کی مجلس کا آخری حصہ تازہ ہو گیا ہوگا. اب بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور نامکمل حدیث کا آخری ٹکڑا بیان کر کے اسے مکمل کروں. نامکمل سے مراد کہ جو اس عشرے میں کئی احادیث ایسی آئیں کہ پوری نہیں پڑھی گئیں اس دن کا جو موضوع تھا، اور یہ جو آج اسی حدیث کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں، ایک تو ویسے ہی آج کا موضوع ہے اور خالی امام بارگاہ علی رضا شارجہ کی بات نہیں کر رہا، ایام عزا میں جہاں بھی جاؤں، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، دس مجالس ہیں تو دس دن، خمسہ ہے تو پانچ دن، جو سوال سب سے زیادہ کیا جاتا، اور خالی میری بات نہیں، میرے قابل احترام دوست، مختلف علماء جو ممبروں پہ جاتے ہیں، سب کا یہی مشاہدہ، اس حوالے سے آج کی مجلس شروع ہو رہی. اور وہ یہ جو دو تین دن ہماری مجلس کا عنوان بھی بنا، رزق کا مسئلہ، जॉब की सिक्योरिटी या जॉब की तलाश, कारोबार या बिजनेस के अंदर पे दर पे नुकसानात, एक दूसरे मोमिन के हवाले से माल खा जाने और ना खा जाने और कर्जा लेने और कर्जा वापस ना करने के हवाले से शिकायत, तो इस साल की पहली 8 मजालिस में वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ हवालों से इस उन्वान पे गुफ्तगु होती रही, लेकिन लोगों को बकौल एक मोमिना के भाषण नहीं सुनना, कोई अमल, कोई दुआ, कोई वजीफा, कोई ऐसी चीज बताइए। लेकिन मैं आज इस हवाले से भाषण ही देना चाहता हूं, सुनना है कि ना सुनना वो अलग चीज, और वो हदीस है इमाम जो इस एतबार से बहुत अहम हदीस है, हर हदीस अहम है, मगर इस एतबार से कि जो हमारे जहनों में दुआ के हवाले से एक तसव्वुर है कि अल्लाह का वादा है कि दुआ अरे कबूल करूंगा, लेकिन कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है अकीदों को छोड़कर कि जिस आयत में कोई एक्सेप्शन ना हो, और ये वही उसूल है जो 8वें इमाम की शहादत के मजलिस में आप सुनते हैं कि पहले ऐलान किया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फी हिस्नी या अमिना मिन अजाबी, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल हो जाए वो मेरे अजाब से बच गया, और फिर इमाम चंद कदम सवारी को बढ़ा के ले गए और रुक के कहा लाकिन बेशर्तहा व शुरूतहा, लेकिन ऐसे नहीं फ्री हैंड, शराइत और शुरूत है। तो ये उसूल अकायद के अलावा इस्लाम के हर हुक्म में चलेगा, बल्कि चलेगा क्या, ये है शराब भी हराम है तो उसूल आ जाता, और झूठ भी हराम है तो कल ही बात आ गई, ये उसूल टूटा कि हर जगह हराम नहीं, और नमाज भी वाजिब है तो ये उसूल टूटा हर जगह वाजिब नहीं है, कुछ जगहों पे छोड़ना पड़ेगी, रोजा तो खैर, हज तो खैर, ये इबादतें तो आपके इल्म में, पहली मजलिस में एक मिसाल और दी थी मैंने, वालिदैन की इज्जत और एहतराम, फिर इशारा किया था, मगर एक नौजवान को चौथे इमाम ने कहा कि अपनी मां को रस्सी से बांध, उसूल टूट रहा, अगर कि वो जो टूट रहा है वो भी एक उसूल अपनी जगह है, लेकिन इतनी लंबी बात आज अगर तमीज में ही वक्त चला गया, दुआ दुआ अल्लाह दुआ कबूल करता है कोई शक नहीं है, लेकिन वो ये ऐलान भी करता है कि कुछ लोगों की दुआ कबूल ही नहीं करूंगा। देखिए एक मसला तो ये कि दुआ कबूल है, नतीजा आते आते वक्त लगता है, खुद उसूल काफी की दूसरी जिल्द में पूरा चैप्टर है किताबु दुआ, दुआ के हवाले से सारे अहकाम हदीसों की शक्ल में आपको वहां मिले, वैसे बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वो हिस्सा है उसूल काफी का जिसका उर्दू तर्जुमा मेरे मरहूम उस्ताद खतीब आजम मौलाना जफर हसन साहब कर चुके हैं, अदीब आजम खैर, उसकी एक हदीस, ये दो अलग अलग बातें मिक्सअप ना हो जाएं इसलिए मैं ये हदीस पढ़ रहा हूं, और वो ये कि रावी ने कहा कि मौला मेरा खुला मसला है दुआ बताई, इमाम ने एक दुआ बताई, चला गया रावी, काफी अरसे के बाद आया, 6 महीने बाद 8 महीने बाद 2 साल बाद, और कहा मौला मेरा मसला तो इसी तरह से बाकी है, दुआ पढ़ रहा हूं आपकी बताइए। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, भाई कबूल कर ली है तो नतीजा तो नजर नहीं आ रहा, अगर आपसे मसलन कहा गया कि तुम बीमारी के लिए दुआ मांग रहे हो, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, आपने कहा क्या कबूल कर ली, मैं तो उतना ही बीमार हूं, कहा गया कि तुम्हारे मसलन रोजी का मसला, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, तो क्या कबूल कर ली, ना कहीं जॉब लगा ना कोई बिजनेस चल सका, घर में वही फाके, अगर इमाम कहते कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई वो अलग चीज, फरमाया कि दुआ कबूल हो चुकी है तो मौला नतीजा, अब इमाम को जलाल आ गया, और इमाम ने कहा नतीजा नतीजा मिलेगा, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी क्या हैसियत है। अच्छा ये अल्फाज मेरे, मफहूम इमाम का। मूसा नबी अल्लाह के जलील उल कदर अंबिया में तीसरे नंबर पर, साहिब शरीयत साहिब किताब अजीम अंबिया में से एक, बगैर जिब्राइल के बराह रास्त जिनसे अल्लाह बात करे वो मूसा। अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने कहा दुआ कबूल हो गई, फिरौन का खात्मा होगा। मालूम है अल्लाह के इस जुमले के बाद 20 साल लगे फिरौन को मरने में, वो जो गर्क हुआ दरिया में 20 साल बाद। एक तो है ना कि कहा कि दुआ किए जाओ, अभी कबूल नहीं होगी, 20 साल में कबूल होगी वो एक अलग मसला। कहा कबूल हो गई दुआ, नतीजा आने में 20 साल लगे, और मूसा जैसे मासूम साहिब शरीयत उलुल अज़्म नबी की दुआ। तो हम और आप तो कोई हैसियत ही नहीं रखते मासूम अंबिया के सामने। यह है हमारी एप्लीकेशन पर अल्लाह ने लिख दिया एक्सेप्टेड 20 साल। हमारे यहां तो लोग ये चाहते हैं कि अभी दुआ जबान से निकले और अभी नतीजा सामने आ जाए, फौरी दुआ, नतीजा फौरन आना चाहिए। इतने जल्दी नतीजा, या पिस्तौल की गोली कहता है या पोटाशियम साइनाइड एक जहर होता, जबान पे रखे और खत्म। इतना जल्दी नतीजा तो नहीं आता, बल्कि बाज दुआएं ऐसी कि अगर नतीजा जल्दी आ गया तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएं। औलाद के लिए दुआ की, बजाय 9 महीने के 4 महीने बच्चा पैदा हो गया। अब आप क्या, खैर छोड़ दे इस बात को, लेकिन लेकिन आप खुद भी कहेंगे ये 4 महीने वो क्या मसले होंगे। कल रात की बात हो रही थी शौहर और बीवी के बाहिमी ताल्लुकात, तो खैर और इससे बढ़ के कुछ कहना नहीं चाहता। तो हर दुआ औलाद के हवाले से आपके जहन में है ना कि आज अगर दुआ कबूल हो गई तो 9 महीने तो लगेंगे, 2-4 वीक कम ज्यादा छोड़ दीजिए, लेकिन यह हर दुआ का उसूल है। कौन सी दुआ? जहां अल्लाह ने लिख दिया एक्सेप्टेड दुआ कबूल। लेकिन अब जो हदीस में पढ़ रहा हूं, जो पढ़ चुका हूं, उसका आखिरी फकरा रह गया था, और चूंकि सबसे ज्यादा सवाल यही किया जाता तो वो जो आखिरी फकरा रह गया उसकी वजाहत हो जाए। वो ये कि अभी तक जो मैंने गुफ्तगू की ये उस दुआ की है जो कबूल हो गई, मगर 5 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह जैसे ही वो दुआ मांगते उसी वक्त ऐलान कर दिया जाता है तुम्हारी दुआ कबूल होगी नहीं। वो लोग भी परेशान हैं, हमारा मसला हल होना चाहिए। वहां तो पहले दिन ही ये सुना दिया गया भाई आम दुआ करने वालों को, ये तो इमाम ने कह दिया 20 साल ठहर जाओ। इससे तो कहा गया कि ठहरने का फायदा क्या, तुम्हारी दुआ कबूल ही नहीं है। अब वो 5 जो गुनाहगार तो नहीं कहेंगे, खुद करदा रहा इलाज नीस, ये वो लोग हैं जो पहले इतना बड़ा कोई ब्लंडर करते हैं और गलती करते हैं और उसके बाद अल्लाह से ये चाहते हैं कि अल्लाह उनके इन ब्लंडर्स का प्रोटेक्ट करे, तो दुआ कबूल नहीं। अब पहले 4 में नहीं पढ़ रहा, पड़ोसी की बात आई, तलाक की बात आई, लोगों को पैसे दे देने की बात आई, मगर एक आखिरी ये मैं जानता हूं कि इतना अहम मसला नहीं, मगर एक तो हदीस का आखिरी फकरा, पूरी हदीस पढ़ दी तो ये भी, और बाद उन लोगों के लिए कि जब वो माली मुश्किलात की शिकायत करते हैं। इमाम ने फरमाया, और इसमें 5वां वो आदमी जिसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता, पहले मरहले ही में रद्द हो जाती, ऐसा आदमी जिसे अल्लाह ने बहुत दिया। अब जुमला वाजे तौर पे सुनिएगा, गलत फहमी ना हो, और उसने वो सारा राह खुदा में खर्च कर दिया, फजूल बेकार कामों में नहीं, राह खुदा में खर्च कर दिया। भाई बहुत से लोग मेरे मुशाहिदे में, अल्लाह जब दे रहा है पैसे, बड़े बड़े मकान बना ली, बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीद ली अपनी, जो हमारे पुराने बुजुर्गों की एक दानिशमंदी होती है विजडम, उसके एतबार से कि चादर से ज्यादा पांव फैला ली, और अब जब हालात बिगड़े, मामलात खराब हुए, तब दौड़ दौड़ के अल्लाह के पास जा रहे हैं। तो अल्लाह तो उस मोमिन से भी, जिसे अल्लाह ने बहुत दिया, उसने कहा मैं मस्जिद बना दूंगा, अपना बंगला वेला कोठी नहीं बनाई, अल्लाह का एक घर बना दूंगा इतना शानदार, बगैर अपने आप का अपना नाम लिए हुए। भाई ये भी नहीं है कि शोहरत या नेकी के और बड़े बड़े काम, और फिर सब खत्म हो गया पैसा उसके पास। अब वो आके कहता है कि खुदावंदा मेरे हालात को बेहतर कर दे, मेरा बिजनेस दोबारा ठीक। मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि कम वक्त में कैसे अपनी दोनों बातें, जो आज का असल मौजू और ये जिमनी बात, आप तक पहुंचाऊं। तो कभी कभार जरा सा मौजू टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इमाम ने फरमाया, जब ये कहता है खुदावंदा मेरी हालत बेहतर बना, तो अल्लाह कहता जब मैंने बेहतर बनाई थी तो किसने कहा था कि इस तरह से मेरे रास्ते में भी सही इस तरह से खर्च कर दे। अब अगर गुनाह नहीं किया उसने, अच्छा इस पर एक अलग बहस है, अपने मर्जी का फतवा देख लीजिए। अगर मराजे के फतवे भी पढ़ने लगू तो ये अशरा क्या, पूरा माह रमजान भी ना काफी है, एक इख्तलाफी मसला है कि अगर कोई राह खुदा में अपनी हैसियत से बढ़ के खर्च करे, वैसे आम जिंदगी जितना आप इसराफ करते हैं, इसराफ किसे कहते हैं, हैसियत से बढ़ के खर्चा, उसका खुमस देना, खुमस वो तो बचत का होता, ये तो हम खर्च कर चुके हैं, का जो खर्च कर चुके हैं चूंकि हराम में खर्च किया तो ये समझो खर्च नहीं किया, और इसका खुमस देना, ये तो है बह, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ इस पर कि अगर कोई आदमी राय खुदा में इसराफ करे तो राह खुदा का इसराफ जायज है कि नहीं, ये यकीनन इसमें दो नजरिए, ला खैरा फिल इसराफ, इसराफ में कोई खैर नहीं, चाहे कहीं पर भी इसराफ, अपनी कोठी ऐसी बनाई या अल्लाह का घर ऐसा बनाया, और दूसरा है कि नहीं, ला इसराफा फिल खैर, नेकी के काम में इसराफ होता ही नहीं है, जितना भी खर्च करो अल्लाह के यहां कबूल है, वो अलग चीज, उस बहस में भी नहीं पड़ रहा। मराजे का फतवा क्या है ये भी आपको खाली मुतवज्जे कर रहा हूं कि अपने मर्जे का फतवा जरूर देख लीजिएगा जब कभी आप कोई बड़ा डोनेशन दें, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन गुनाह नहीं किया इसने, चले हम मान लो, मगर ठीक है नेकी के काम में खर्च किया, खर्च कर दिया, अब अल्लाह के पास ना आओ, अल्लाह तुम्हें कंडेम भी नहीं कर रहा है कि क्यों तुमने मस्जिद में खर्च किया, लेकिन मस्जिद में खर्च करके अल्लाह पे एहसान न जताओ कि सारा का सारा हमने खर्च कर दिया है, अब हमारा घर तू चला। बहुत ज्यादा इसमें बात हो सकती है, लेकिन चूंकि ये मेरा असल मौजू नहीं, मैं आपको नेकी से नहीं रोकना चाहता हूं, मेरा असल मौजू ये, जब इतनी बड़ी बड़ी छलांगे नेकी के कामों में भी दुआ को रुकवा देती हैं, तो वो लोग जो इसलिए बिजनेस में परेशान हैं कि उन्होंने अंधे फैसले किए, अकल इस्तेमाल किए बगैर बड़े बड़े सौदे किए, उसको अल्लाह ने दिया और उसने मस्जिद बनाई, यतीम खाना बनाया, राह खुदा में खर्च किया, तो अल्लाह ने कहा तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। गलत फहमी ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तूने गुनाह किया, हो सकता है कि हमारे मर्जी के फतवे में गुनाह भी हो, लेकिन नहीं, मैं ये लफ्ज नहीं कहता, ठीक किया तूने, लेकिन अब मुझसे ना मांग, फैसला तेरा था, हालात को देख के तूने खुद फैसला किया कि नहीं मुझे सारा मस्जिद में खर्च कर देना, और खर्च करने के बाद अब कहता है कि खुदावंदा मुझे बंगला भी चाहिए अपने लिए, पहले ही बजटिंग करता। लेकिन ये फिर वही बात, बिजनेस में, जॉब में, लोगों से लेन देन में, आज जो बहुत से लोग परेशान, वो सिर्फ इसलिए परेशान नहीं है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ, उनके साथ चीटिंग हुई, इसलिए भी परेशान है कि गलत फैसले किए। अच्छा कारोबार में कोई आदमी नहीं जान सकता है कि इस फैसले का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन जो आंखों से नजर आ रहा, तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारे पास टोटल एसेट्स क्या, कितना बड़ा सौदा करके बैठ रहे हो, ये अपनी गलती, इस पर अल्लाह हो सकता ये सवाल जवाब ना करे, गुनाह नहीं है, लेकिन फिर दुआ भी ना करो। खैर, अब ये पूरा एक घंटे का मौजू हो सकता है, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि जहर पी पी के ये कहना कि खुदाबंदा मुझे बचा ले, जहर पीते जाओ और कहते जाओ कि खुदाबंदा मुझे बचा ले, यही चीज इन पांच बातों में है, जिनमें से पांचवी बात आज इसलिए मैं फट पड़ा कि पहले दिन से लोग मौलाना बिजनेस में नुकसान है दुआ बताई, मौलाना जॉब में ये प्रॉब्लम हो रहा है दुआ बताइए। तो कभी अपनी गलती को भी चेक करें। और यहीं पर इस्लाम की अहम तरीन इबादतों में से एक इबादत आई कि मोमिन या मोमिना रात को जब बिस्तर पे सोने जाते हैं तो उनका काम यह होना चाहिए कि नींद आने से कुछ पहले अपना पूरा दिन उसको एसेस करें, उसको चेक करें, उसका जायजा लें कि आज का दिन जो हमने गुजारा इसमें अल्लाह की नाफरमानी कितनी है, अल्लाह की इताअत कितनी है। ये मोमिन और मोमिना की अहम तरीन पहचान बताई गई नफ्स के हवाले से, जो रसूलुल्लाह ने नौ हिदायतें की। तो अफलुकुल किताब, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा भी है और शायद उर्दू भी, उसमें यह हदीस मौजूद है। तो खास इसमें यह एक बात थी कि रात को सोते वक्त और अगर आराम से सोते वक्त यह जज्बा पैदा नहीं हो रहा है, आराम से सोते हैं ना लोग, एयर कंडीशन लगा हुआ, कारपेट बिछा हुआ है, बेहतरीन बेड है जिसके ऊपर आप लेटे हुए। मुझे मालूम है कि मैं इस मजमे के हर आदमी की बात नहीं कर रहा, कितना मुश्किल वक्त भी लोग गुजार रहे होंगे, लेकिन नमाज के लिए जो हदीस है ना, उससे मिलती जुलती एक हदीस इस इबादत के लिए। अब बस मैं अपने फौरी मौजू पे आ गया, बस ये हदीस पूरी हो जाए कि अगर नमाज के लिए ये समझो अल्लाह को देख रहे, मुमकिन नहीं है तो कम से कम ये समझो अल्लाह तुम्हें देख रहा। बहुत मशहूर हदीस, मैंने भी इस अशरे में अब तक दो बार पढ़ ली यह हदीस। उसी तरह से हर रात को सोने से पहले अपना जायजा लो पूरे दिन का, और किस हवाले से, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की नाफरमान, यह मोमिन की पहचान बताई गई। बल्कि रसूल का जुमला अल्लाह से कुर्बत, अल्लाह की रजा हासिल करने का तरीका यह है। अब यह एक हदीस, मगर अगर तुम्हारे दिल और दिमाग की यह हालत नहीं हो पा रही, ज़हन मुतवज्जे नहीं है, तब वो जुमला आया कि ये समझो हर रात हर रात हर रात ये समझो कि अपने बिस्तर पे नहीं लेटे हो बल्कि कब्र के अंदर लेटे हो, और मुनकिरो नकीर तुम्हारे सराहने खड़े होकर सवाल शुरू करने वाले, फिर क्या करोगे? वही हर रात। कि वैसे तो मोमिन पे ये कैफियत इस तसव्वुर के बगैर होना चाहिए, लेकिन मुश्किल है। तो पैगंबर ने कहा हर रात जब बिस्तर पे सो तो ये समझो कि गोया कब्र में हिसाब किताब दे रहे, जवाब दे। और इसमें सबसे अहम बात जो देखना वो है, बहुत अहम एक हदीस का खुलासा पढ़ रहा हूं, खुलासा। घड़ी की सुइयां, कल रात मैंने मातम करने वालों के साथ थोड़ी सी ज्यादती कर दी, आज ये ज्यादती नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत अहम बात, आप बिस्तर पे सो गए और पैगंबर ने कहा अपना जायजा लो, आपने जायजा लिया, क्या लेंगे? नमाजें आज हमने पढ़ी के कजा की, पहली चीज जहन में नमाज आएगी, उसको चेक करेंगे। आज औरत है मसलन, मैं बेहिजाब घर से बाहर निकली या हिजाब किया, और ये तो घर तो मैं खाली मुहावरतन कहता हूं, हिजाब का कोई ताल्लुक घर से नहीं, ना महरम से, ना महरम घर के अंदर है तो यहां भी हिजाब वाजिब, ना महरम किसी वजह से आज घर के बाहर नहीं है तो वहां भी हिजाब वाजिब नहीं, ये मुहावरतन। जायजा लिया आपने, फौरन सोचा कि आज सुबह कहीं मैंने दाढ़ी तो शेव नहीं कर ली थी। जायजा लिया आपने रात को सोते वक्त, आज मैंने किसी का हक तो नहीं खा लिया था। जायजा लिया आपने सोते वक्त, आज मैंने कोई हराम खाना, पिज्जा बर्गर कुछ तो नहीं खाया। यही चीजें जहन में आएंगी। सबसे पहले जो चीज सोचना कि आज पैगंबर का वो जुमला मुझे इस जुमले के लिए मजबूर कर रहा, کہ بستر پہ لیٹو تو یہ سوچو کہ اپنی قبر میں پہنچ گئے اور حساب کتاب دے رہے ہو. سب سے پہلے یہ سوچو کہ آج گھر والوں کا اور خاص طور پر اپنی بیوی کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, یہ کل کی مجلس سے ربط ہے. حق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق, رویہ, طریقہ, سلوک. اور یہ میں نے کیوں کہا کہ سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں آئی, ٹاپ آف دا لسٹ اصحاب رسول. اگر آپ پیغمبر کے عظیم ترین صحابیوں کی ایک فہرست بنائیں, یہ دس ہر صحابی قابل احترام رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا قابل احترام, مگر ٹاپ آف دا لسٹ دس کا نام لکھیے, اس میں ایک نام آئے گا سعد ابن معاذ کا. یہ تو اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون. جیسے ایک نام ہمارے ہاں بہت چلتا ہے, علی ابن یختی. کوئی بڑا آدمی آپ سے ملنے سے انکار کر دے, پرچے پہ لکھ کے خالی بھیج دیں علی ابن یختی. اگر وہ ذرا بھی تاریخ کو اور شیعت کو جانتا ہے, اور پہلے جانتے تھے, کھٹ سے دروازہ کھول کے آپ کو بلا لے گا. بڑے بڑے طاقتور, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, سرکاری آفیسر جو ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دیں, خالی پرچے پہ لکھ دیا علی ابن یقین. کیسے دوڑتے ہوئے آئے اور کتنے احترام سے لے کے گئے, واقعات کا ایک سلسلہ. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ نے ایسے ہی ایک بہت بڑے آفیسر, وہ تو اچھے بھی تھے, ان کے چہلم کی مجلس پڑھی تو اس وقت موجود ہے انٹرنیٹ پر, پورا تفصیلی واقعہ اور اس حوالے سے شیعت کا مزاج. علی ابن یختین, ایسا ہی ایک نام ہے سعد ابن معاذ. ذرا پرچے پہ لکھ دیجئے اور مسئلہ حل. پرچے پہ لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دریا میں ڈال دیں یا اس پہ کوئی عمل پڑھیں یا اس کو آگ میں جلائیں, یہ نہیں. سعد ابن معاذ پیغمبر کے عظیم, بھئی اس سے بڑھ کے سعد کی عظمت کیا ہوگی, اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہوگی. میں کہتا ہوں یہ فضائل کی انتہا ہے یہ جملہ مولا کا, یہ کہنا کہ اگر پیغمبر کے بعد سعد زندہ ہوتے تو ہمارا کوئی حق ضائع نہ ہوتا, کوئی ہم پہ ظلم نہیں کرتا. مولا کہہ رہا, مشکل کشا عالم کہہ رہا ہے, سعد ہوتے تو اہل بیت پہ کوئی ظلم نہ ہوتا. وہ پیغمبر کی زندگی میں نہ صرف یہ کہ مر گئے بلکہ شہید ہوئے, بلکہ جنگ خندق میں ایک ہی مسلمان تو شہید ہوا ہے, سعد ابن معاذ. کافر کون مارا گیا ہر ایک کو معلوم ہے, عمر ابن عبد البت. اور مسلمان کون شہید ہوا؟ سعد ابن معاذ, عظیم ترین صحابی. واقعہ 40 منٹ کا ہے, میرے پاس 4 منٹ بھی نہیں, لیکن اتنا مشہور واقعہ کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور پھر ایک جملہ وہ کہا جس کے لیے میں نے ربنا آتنا فی دنیا کی آیت تلاوت کی ہے, وہ ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا. لیکن اس سے پہلے اصل واقعہ, ابھی پیغمبر قبر میں اتار کے پلٹے ہیں کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مڑ کے دیکھا اور آنسو اور بڑھ گئے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا ابھی میں اس کی قبر سے ہٹا تھا کہ قبر کی دیواریں تیزی سے آگے بڑھی اور اپنے درمیان لے کے سعد کو فشار قبر کا عذاب دینے لگی. وہ عظیم منزل. چوتھا امام کہتا ہے کہ اب کی لذیق لہدی, میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب میری قبر میرے اوپر تنگ کی جائیں گی, فشار قبر. ابھی پیغمبر جنت البقیع سے, قبرستان سے قدم باہر گئے اور عذاب شروع ہو گئے. ہم اور آپ کون؟ سعد کے قدموں کی خاک جو ان کے فضائل پڑی. یا سعد انت شاہن فی حلوق الکافرین, تو کافروں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی, چین نہیں آتا جب تک کہ تو زندہ, کافروں کو چین نہیں آتا. اے سعد, تیری سفارش سے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے جتنا قبیلہ ہے مزر کی بکریوں کے جسم پر موجود بالوں کی تعداد. اور خود ابھی قبر میں پہنچے, ہمیں اور آپ کو اللہ نے رعایت دی, ہم جب قبر میں پہنچیں گے تو رات ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا. اسی لیے ہمارے یہاں نماز وحشت بھی پڑھی جاتی ہے, लेकिन खाली नमाज वहशत नहीं, मरने वाले के लिए और भी नेकियां सोचना। हमारे यहां तो नमाज वहशत पढ़ के लोग मुतमईन हो गए। ये कितने वाकयात हैं भाई, 3 साल 4 साल एक वाकया मैंने पढ़ा। अब आप डर गए कि वाकया का तस्करा किया, फिर आधे घंटे खींच लेंगे मौलाना। नहीं, वाकया यही ना, उसकी मां मरी, जनाब अब्बास से वादा किया इनके कजा नमाजें पढ़ूंगा तब अजाब खत्म हुआ। इतना मुख्तसर तो मैंने आज तक किसी वाकये को नहीं किया, लेकिन मजबूरी। तो अब हमारा कोई मरने वाला दुनिया से जाए, दोपहर के 2 बजे दफन किया गया, इसका अजाब शुरू होगा अगले दिन फजर की नमाज के बाद। पूरा दिन पूरी रात यह अजाब से बचा हुआ, रात को दफन किया 9 बजे, फजर की अजान तक यह अजाब से बचा हुआ। शायद कोई पढ़ ले इसके लिए नमाज वहशत। एक दिलचस्प मसला बता दूं जो आपके लिए बेकार है। अरे बेकार है तो क्यों बता रहे, लेकिन मसला दिलचस्प है। बाज़ उलमा ने यहां तक कहा है, बाज़ उलमा का लफ्ज जब आ जाए इसका मतलब है कि आप अमल नहीं कर सकते जब तक कि आपके मर्जी का यह फतवा ना। यहां तक कहा है कि आदमी एहतियातन अपनी जिंदगी में अपनी नमाज वहशत पढ़ ले, इजाजत। बाद महाराजे का फतवा है, आपके मर्जी का नहीं, लेकिन एक फतवा है हमारी किताबों में नमाज वहशत की अहमियत की वजह से। और खास तौर पर जिस जमाने का यह फतवा, उस वक्त तो लोग मरने वाले का इतना गम करते थे कि पागल होते, ख्याल भी नहीं होता था कि नमाज वहशत तो नमाज वहशत, अपनी वाजिब नमाजें छूट जाती थी। एक वक्त में इतनी मोहब्बतें थी और मौत से लोग मरने वाले की हालत पे इतना मातम करते थे तो कहा एडवांस इजाजत है। अब यह एक बहस है ना कि कौन कौन सी इबादत आप अपनी जिंदगी में कजा कर सकते हैं, नमाज, रोजा, हज। नमाज शब एक ऐसी नमाज है जो उसका असल टाइम है, इजाजत है कि एडवांस में पढ़ी जा सकती है। तो नमाज वहशत के लिए भी एक फतवा। मैं फतवों के दरमियान आपको नहीं उलझाना चाहता, तो ये क्यों फतवा पढ़ा, ये बताने के लिए ये नमाज कितनी काम आने वाली, क्या अहमियत की वजह से कहा कि एडवांस में भी इजाजत। आज के महाराजे किसी एक मर्जे ने भी इजाजत नहीं दी, लेकिन एक फतवा है। जैसे ये भी अगला फतवा ये मालूमात के लिए दे रहा हूं, ये तो वाकई मैं फिसल गया अपने मौजू से, लेकिन एक मसाला है शरी। जैसे तमाम महाराजे का इत्तेफाक है कि जिंदा आदमी को इजाजत है गुस्ल मैयत करे, कफन पहने, 7 अज़ा पे काफूर लगा, फिर मरे। लेकिन ये हर जिंदा के लिए नहीं, एक केस है ना, एडवांस में गुस्ल मैयत, ये तो मैयत ही नहीं है, तो जिंदा है अभी। मैयत को गुस्ल तो दूसरे देते हैं, ये अपने आप को खुद गुस्ल देगा और कफन पहनेगा। हाँ, नमाज जनाजा मरने के बाद होगी, एक मसला है ना। और तमाम शिया उलमा के नजदीक सही, अलबत्ता केस बहुत ही कम पेश आने वाला। कब? आजकल। वरना यही वाला केस जो मौलाना मोहम्मद अली नकवी साहब का उनवान था रजत, उसमें बहुत ज्यादा ये पेश आएगा, एडवांस में गुस्ल मैयत करो 3 गुस्ल और कफन पहनो और हुनूत करो, हाँ नमाज और दफन तुम्हारे बाद है। तो खैर, वो तो इत्तेफाकी मसला है तमाम शिया मराजे का। नमाज वहशत में भी बाज ने इजाजत दी है कब्र की वजह से, कब्र के अजाब की वजह से, जो कि साद इब्न, अच्छा बात ये नहीं थी, बात ये थी कि अल्लाह ने हमें सहूलत दी और इतने अजीम सहाबी रसूल को जो मौला की विलायत में इतना भरा हुआ था, मौला ने कहा ये होता तो तुम देखते मेरी विलायत की शान। वो इतने जल्द अजाब का निशाना बना कि नमाज वहशत वगैरह का वक्त तो अभी आया ही नहीं, दिन के वक्त दफन किया गया। इजाजत अल्लाह की तरफ से मोहलत मिलनी चाहिए, इनको नहीं मिली। और न सिर्फ यह कि अजाब आया, बल्कि सख्तरीन अजाब आया, कब्र की दीवार अपने दरमियान लेके दबाए। सलमान फारसी से उस मुर्दे ने कहा था ना कि मुझे तो ऐसा लगा कि पूरा आसमान मेरे सीने पे गिर पड़ा है और मैं मेरी हड्डियां चकना चूर होके रह गई। मरने वाले को गुस्ल आराम से दो, ये बात कल आई थी ना उसी। तो अब पहला सवाल साद इब्ने मास, नमाज का नहीं हुआ, मैं अहमियत कम नहीं कर रहा नमाज की, माजल्ला। पहला अजाब, सवाल नहीं अजाब, नमाज का नहीं आया, वाजिबात का नहीं आया, हराम का नहीं आया, पहला अजाब जो आया तो लोगों ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह इतने जल्द अजाब। अपने जुमले की वजाहत कर दूं, कोई नमाज नहीं पढ़ता अजाब आएगा उस पर, कल की मस्जिद शुरू वहीं से होगी। लेकिन एक रात ठहरने के बाद, यानी वही जो बार बार कहने का जरूरत नहीं, नमाज वहशत कजा होने के बाद तब आएगा अजाब नमाज का। इनको इतने जल्दी अजाब कहा? हा, इन्नहु फी खुल्क मा अहलिहि सू, ये अपनी बीवी के साथ बड़ी बद अखलाकी और सख्ती से बात करते थे। इतना बड़ा गुना, इसी वजह से मैंने कहा कि रोज आना रात को बिस्तर पे सोए और अपने अमल का जायजा लें, ये पहले चेक करें। आज घर वालों, बीवी और बच्चों के साथ कोई ऐसी बद अखलाकी, लहजे में सख्ती तो नहीं हुई? मगर ये इस्लाम है, औरत बीवी आपकी बेहिजाब घर से निकल रही और उसमें आपने नहीं रोका नरमी, तो वो नरमी मुसीबत बनेगी, और आम हालात में सख्ती तो ये सख्ती मुसीबत बनेगी। दीन समझना, छह अंधों के बीच में हाथी नहीं फंसना चाहिए, बाकायदा इस्लाम को समझना, कहां नरमी कहां सख्ती। साद इब्ने मास क्लासिकल एग्जाम्पल है कि कब्र के अंदर इस, और ये वो हदीस भी एक दफा क्यों ना दोहरा दूं जो एक दो तीन तीन बार पढ़ चुका हूं, शायद यहां नहीं वो जो इससे पहले मजलिस से जाती, लेकिन तीन बार तो पढ़ी और बहुत जल्दी जल्दी दोहरा देता हूं, क्योंकि ये हदीस हमारे यहां बहुत मशहूर, मगर जितनी मशहूर ये हदीस है इसका आखिरी जुमला उतना ही गैर मशहूर। हदीस में चार बातें हैं, हमारे यहां तीन मशहूर, चौथी मशहूर नहीं। बहुत जल्दी, क्योंकि जो मशहूर चीजें उनको जल्दी। कहा कि जिब्राइल जब भी मेरे पास आते थे, जब भी, चार बातों की इतनी ताकीद करते थे कि मुझे लगता था कि ये चीजें मेरी उम्मत पे वाजिब होने वाली। कहा कि जब भी जिब्राइल आते हैं, किसी मकसद से भी आए, कुरान लेके आ रहे हैं, पैगाम लेके आ रहे हैं, जियारत के लिए आ रहे हैं, किसी भी मकसद से आए, ये जरूर याद दिलाते थे, या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत को मिसवाक, जो आजकल टूथब्रश, इसकी ताकीद कर, ऐसा कि मुझे लगा कि जैसे वुजू वाजिब है ये भी वाजिब हो जाए। जब भी आते हैं नमाज शब की ताकीद जरूर करते हैं, इतना भाई मगरिब के बारे में कुछ नहीं कहते जिब्राइल, फजर के बारे में कुछ नहीं कहते जिब्राइल, नमाज शब के मुझे लगा कि अनकरीब ये नमाज शब मेरी उम्मत पर छठी वाजिब नमाज बनने वाली। इतना 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 मशहूर बातें हैं। जब भी जिब्राइल मेरे पास आते हैं, पड़ोसी के हक का इतना तस्किरा करते हैं कि मुझे लगा कि अनकरीब वाजिब होने वाला है कि जब तुम मरो तो तुम्हारी जायदाद में से पड़ोसी को भी मिले। रिश्तेदारों को मिलता है ना, बेटे को और बेटी को, बाप को और मां को, पड़ोसी का भी हक ना बन जाए, इतना ताकीद करते हैं। और जब जिब्राइल, ये तीन बातें पढ़ी जाती, बहुत पढ़ी जाती, मैं खुद इकरार कर रहा हूं, ये तो मैंने आपके तीन मिनट जाए तो नहीं किए, एक हदीसे रसूल सुनाई है, लेकिन बहरहाल तहसील हासिल जरूर हुआ। चौथी चीज, और जब जिब्राइल मेरे पास आते हैं, बीवी के हक की इतनी ताकीद करते हैं, ये नहीं पूछते कि या रसूल अल्लाह वो आपकी उम्मत ने मां का हक अदा किया कि नहीं, इतनी ताकीद करते हैं कि मुझे लगा कुरान में एक आयत और आने वाली है, खबरदार बीवी के सामने उफ भी ना करना। अब ये हदीसें हमारे यहां लतीफों का निशाना बन जाती, जोक हो जाते हैं, عورتیں بھی حدیث کو غلط انداز سے استعمال کرتی ہیں. اب پتہ نہیں آج کتنی بیویاں گھر جا کر اف اف والی بات آپ سے کہیں گی, میری جان بچ جائے گی کہ میرے بچے کا ہیئر اسٹائل نہ بگاڑیے, ورنہ وہ میری جانے متوجہ ہوں. کوئی اور پوائنٹ نکالو مولانا پر اعتراض کا تو خیر, آج ٹارگیٹ آپ بنیں گے, آج میں بچ نکلوں گا. لیکن نہ عورتوں کو اسے مذاق میں لینا ہے, نہ مردوں کو مذاق میں لینا. فلا تقل لهما اف, قرآن کہتا ہے والدین کے سامنے اف نہ کہنا, اور پیغمبر کہہ رہے کہ جبرائیل نے آ کر والدین کے بارے میں پوچھا ہی نہیں, بیوی کے بارے میں اف. اب یہ وہ چیز ہے جہاں کل رات کی بات پہنچی, حسین کے گھر میں ہم نے رباب کو دیکھا, حسین کے گھر میں ہم نے لیلہ کو دیکھا, حسین کے گھر میں حسن کے گھر میں ہم نے فروا کو دیکھا, مولا کے گھر میں ہم نے ام البنین کو دیکھا. میں شہزادی کی مثال نہیں دیتا ہوں, کبھی کبھار کبھی دیتا ہوں لیکن زیادہ نہیں دیتا ہوں, کیونکہ ہماری اور آپ کی عورتیں ہو کے مرد ایک ہی جملہ کہہ کے بچ نکلیں گے, وہ تو معصومہ کون ہیں, اصل نور ہیں. حدیث کسا میں تعارف کا ذریعہ رسول کے ہوتے ہوئے فاطمہ, وہ تو جو بھی جس طرح بھی ان کا کردار آئے بہت کم ہے. میں مثالیں دیتا ہوں جو امتی, جو عام گھرانوں سے آنے والیاں. لیکن یہاں رک کر ایک بات کہوں, انشاءاللہ یہ بات چھوٹا سا ایک واقعہ ہے اس کے حوالے سے کہوں گا, واقعہ بہت بڑا مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں. مختصر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیونکہ پہلے دو تین دفعہ پڑھ چکا, زیادہ نہیں دو تین دفعہ, چاہے دو دفعہ ہی, یہاں کی بات کر رہا ہوں, باقی دنیا کی ذمہ داری نہیں لیتا. مختصر, بہت ساری ایسی نیکیاں جو ہم سے چھپ گئی, ہمیں پتا نہیں ہے کہ اس میں بھی کتنا ثواب. ایک زمانے میں ہمارے مشہور تھا اور صحیح مشہور تھا کہ راستے میں پتھر ہو تو اس کو ہٹانے کا بھی ایک ثواب ہوتا. آج تو آپ دیکھیے گا, میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں کراچی, یہ سارا کچرا ہی گاڑی سے ہاتھ نکالا, پورا کچرا اٹھا کے راستے پر چلنے والوں کے راستے میں ڈالا. خیر بات, اب لمبی بات کا فائدہ نہیں, چھوٹی نیکیاں بہت ساری ایسی جو ہماری آنکھوں سے چھپ گئی, ہم کو پتا نہیں کہ اس میں بھی ثواب. دو مومن ملے, دونوں کو سلام تو کرنا ہے, جس نے پہل کر دی کتنا زیادہ اس کا ثواب, ڈبل نہیں ٹرپل نہیں, کہا اگر سلام میں 70 ثواب ہے تو 69 ملیں گے پہل والے. اب یہ کہ سلام دونوں کو کرنا, یہ ناراضگی نہیں ہے کہ ہم تو ان کے سلام کا بھی جواب نہیں دیں گے, لیکن چھپ گیا ذہنوں سے اس کا ثواب. اور ایسی ایک لمبی لسٹ ہے, بلکہ میرا ایک پورا عشرہ, وہ چھوٹی نیکیاں جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے, اور وہی ایک مومن کے جنت و جہنم کا فیصلہ کریں گی. ایک مومن ایسا آئے گا قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال بالکل برابر ہو جائے, جتنے گناہ ہیں اتنی نیکیاں ہیں, جتنی نیکیاں ہیں اتنے گناہ, ترازو بالکل برابر ہو گیا بالکل. اللہ کہے گا اتنی سی نیکی کہیں سے لے کے آ جاؤ, ذرا سا نیکیوں کا پلہ بھاری کرے, ذرا سا, بہت زیادہ نہیں. ایسا نہیں ہے ترازو کے ایک پلے میں اس بچے کو بٹھایا دوسرے میں مجھے بٹھایا, یہ تو کہا آسمان پہ پہنچ جائے گا, ایسا نہیں, کہا صرف ماشا نے رتی, ایک رتی بھر کی نیکی لے کے آ جاؤ, ترازو کے پلے کو جھکانا, تب اسے ریئلائز ہوگا کہ کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں میں نے اس لیے چھوڑ دی. اب وہ قرآن شروع کرنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دو تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی, بہت بڑی کا مطلب بہت بڑی نہیں ایک نیکی ہے اس کا, یہ اتنی سی نیکی ترازو کو ذرا سا جھکا کے تمہیں جنتی بنا دے گی. ایک لسٹ ہے, پورا عشرہ ہے میرا, لیکن انٹرنیٹ پہ نہیں ہے, اس اعتبار سے بہت کم لوگوں نے سنا ہے. تو اب یہ ایک ایک, اور اب جو میں بتا رہا ہوں یہ دیکھیے کتنی بڑی نیکی جو ہمارے یہاں صرف یہ کہ بھلا دی جا رہی ہے, بلکہ یہ جتنی بڑی نیکی ہے اس کا الٹ اتنا ہی بڑا گناہ وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو رہا. और किस चीज से हो रहा है ये भी सुन लीजिए, जुमला आ जाए वजाहत कर ले, फेसबुक और व्हाट्सएप, बस मैं आ गया। तीन दिन से मैंने फेसबुक व्हाट्सएप का नाम नहीं लिया था, आज आ गया कि आखिरी तकरीर में इसका आप दूसरा पहलू देखेंगे जो आमतौर पर तवज्जो होती है मिंबरों से नहीं होती, लेकिन पहले असल वाकया मुख्तसर कर रहा हूं, बच्चों के लिए शायद नया हो लेकिन दूसरों के लिए सुना हुआ होगा, और वो ये हमदान। हमदान ईरान का एक बहुत मशहूर शहर और अपने जमाने में उसकी एक अजीब शान थी। और उससे पहले एक सवाल कर लूं, कितना खुशकिस्मत है वो मोमिन जो वादी सलाम में दफन हो, और कितना खुशकिस्मत है वो मोमिन जो वादी सलाम में भी मौला की जरी के अंदर दफन हो। मौला की जरी के अंदर कितना खुशकिस्मत है। ये खुशकिस्मती किसको मिली, उनमें से हमदान। अब हर शहर में कुछ चीजें हर शहर का हिस्सा होती, ताजिर होते हैं, सरकारी मौकमे होते हैं, निजाम चलाने वाले मसलन दर्जी है, धोबी है, बावर्ची है, बहुत सारी चीज, मस्जिदें होती, इबादत करने वाले होते हैं, और शराबखाने होते हैं, जुए खाने होते हैं, गुनाह करने वाले। चुनाते वहां का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ गुंडा, गुंडा भी नहीं गुंडों का सरदार, वो उसका वाकई था, बड़ा हसीन जमील खूबसूरत, जो एक मर्द की पर्सनालिटी होनी चाहिए। अपने दोस्त के साथ कैफे में बैठा, वो वाले कैफे जो फ्रांस में बहुत हैं, इंग्लैंड में वेदर की वजह से नहीं होते। सड़क के बाहर फुटपाथ पे मेजें लगाई गई हैं, उस पर बैठ के चाय पी रहा। एकदम उसके दोस्त ने देखा कि उसने अपना लिबास बिगाड़ा। अब जैसे हमारे क्रीज और स्त्री और इसका कितना ख्याल नहीं, बहुत बिगाड़ा, आस्तीने वास्तीने उलट पुलट की, गरेबान वगैरह खोल दिया, अपने हेयर स्टाइल को बिगाड़ा। उसके पास कोई पर्चा नहीं आया, मेरे पास आ गया। खैर, तो खुलासा यह है कि जितना मैं मुख्तसर करूं, एक आदमी के लिए अपने आप को बशकल बनाना मुमकिन है, उसने बनाया। अजीब बात, घर के अंदर नहीं है, पब्लिक में है, सड़क पे बैठा, वहां तो आदमी अपने आप को बना सवार कर पर्सनैलिटी शो करता। दोस्त ने घबरा के पूछा, क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो? हाँ, पागलों के बारे में ये देखा, गरेबान चाक कर लिया, कपड़े फाड़ लिए, सर के बाल नोच लिए। तुम कहा, सड़क के दूसरी तरफ एक औरत हिजाब के साथ जा रही है, इशारा किया, कहा ये औरत मैं जानता हूं, इसके अंदर आजकल इसके घर में झगड़ा चल रहा है शौहर और बीवी का। दो जुमले कह रहा हूं, एक आज का मौजू है, एक कल आएगा मोमिनीन के बेहद इसरार पर, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए वो बात फैल गई है, इसलिए मैं यहां पढ़ ही नहीं रहा था, दसवीं मजलिस में पढ़ूंगा बेहद इसरार पर। ये किससे कह रहा हूं, इंटरनेट के मुजाहिदों से, इंटरनेट के अजादारों से, कि पढ़ूंगा बहुत पुरानी बात, लेकिन एक ही चीज है दो पहले। कहा कि ये औरत शौहर से इसका झगड़ा चल रहा है, और वो वाला झगड़ा जो आजकल भी बहुत बढ़ गया, शौहर बीवी लड़ते हैं, बाद में सोचते हम किस बात पे लड़े, समझ में भी नहीं आता, और जब अंदाजा बातें की तो पता चला कभी किसी बहुत ही बेतुकी बात पे कि दोनों हंस रहे हैं, लेकिन लड़ाई हो जाती, घर का माहौल खराब। और इसकी वजह मैं जानता हूं, क्योंकि मेरी फर्स्ट कजिन है, मेल मिलाप नहीं है, सिला रहमी नहीं है, क्योंकि मैं गुनाह की लाइन में आ गए। अब ये सारी तफसील मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, वक्त नहीं, जरूरत नहीं, लेकिन बहरहाल मैं जानता हूं कि इसका असल मसला ये है कि ये समझती है कि ये जिस मेयार की है, इसका शौहर घर वालों ने जो सिलेक्शन किया वो बहुत इसके मेयार से कम किया, हुस्न व जमाल के एतबार से, गट्स के एतबार से, सलाहियतों के एतबार से इंतहाई नामाकूल और मरदूद किस्म का शौहर। घर वाले तो ऐसे ही रिश्ते करते हैं, लड़की का बाप ये तो नहीं देखता है कि मेरी बच्ची इस घर के अंदर एडजस्ट होगी कि नहीं, मेरी उसके बाप से दोस्ती है। भाई तुम तो कब्र में पांव लटका बैठे हो, दो साल में मर गए, चार साल में, 50 साल तो उस बच्ची को गुजारना, तुम्हारी दोस्ती को लेके क्या वो चाटेगी? नहीं, ये हमारे यहां भूल जाते हैं लोग। हां, वो बच्चियां बेदीन, लिबरल, बेहिजाब, नंगे लिबास पहनने वाली हैं, वो अपना हक ले लेती, और पैगाम मिलता है हिजाब वाली लड़की को कि अपना हक लेना है तो ऐसा बनना पड़ेगा। ये कितनी बातें मैं बयान करूं, वक्त भी नहीं है, बहुत जल्दी से अब तो हां मातम ही मातम। खुलासा ये कि जब ये मुझे देखेगी तो और ज्यादा इसके दिल में ख्याल पैदा होगा कि मेरा शौहर तो इतना हसीन जमील होना चाहिए। अब जब घर जाएगी ये ख्याल लेके और झगड़ा होगा, मैं नहीं चाहता कि इनमें झगड़ा हो। चले खैर, एक काम खत्म मुकम्मल। यह गुंडा बदमाश, ऐसा गुंडा बदमाश कि यह भी नहीं पता इसको मोमिन है शिया है, यह भी नहीं पता मुहर्रम के आशूरा क्या। एक दिन यह शाम को हमदान के बाहर गया था, वापिस आया, दरवाजे बंद हो गए शहर के, पुराना जमाना क्या वजाहत करूं, अब बच्चों के लिए भी वजाहत का वक्त नहीं। शहर का दरवाजा बंद, नॉक किया। आमतौर पर अगर कभी कोई आदमी बाहर रह जाए, नॉक करे, चौकीदार वो पहरेदार वो नातूर वो हारिस दरवाजा खोल देता, वो खोल ही नहीं रहा दरवाजा। यहां तक दरवाजा टूटने के करीब हो गया, मगर शहर का दरवाजा तो बहुत मजबूत होता, आखिर दरवाजा खोला, एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। एक बार मैंने उससे देखा, कहा तू कौन है? गुंडा है शहर के एक एक आदमी। कहा कि मैं बाहर गांव का रहने वाला हूं, यहां क्यों आया? कहा आज आशूरे का दिन था, मुझे मजलिस पढ़ने के लिए बुलाया गया, शाम में गरीबा पढ़ के जा रहा हूं, बाकी सारा शहर थकन की वजह से सो रहा। शाम में गरीबा कितनी थकन होती है मोमिन, शराब के नशे में है ये गुंडा। कहा अच्छा, शाम में गरीबा क्या होता है? कहा मसाए पढ़े जाते हैं। कहा मुझे भी सुनना। अब शख्सियत जानी पहचानी, मजबूरन मसाइब पढ़े जनाब अब्बास के मसाइब के दो जुमले, इतनी रिक्कत तारी हुई कि वो तो चला गया, वहीं इसने तौबा की। वाकई को आधे से भी आधा कर रहा हूं। अगले दिन शहर में अपने सारे गुनाहों की माफी मांगी और सीधा निकला कि अब शहर में रहूंगा, लोग मुझे जानते हैं। नजफ पहुंचा, जिंदगी नजफ में, और ऐसा पक्का नमाजी बना। वो जमाना था आगाए मिर्जा बुजुर्ग शिराजी की मर्जईयत का, शेख मुर्तजा अंसारी का भी इंतकाल हुआ, आगाए शिराजी जो तंबाकू वाला फतवा दिया उनकी मर्जईयत थी, वो अभी सामर्रा शिफ्ट नहीं हुए थे। और नजफ मौला के सहन में नमाज जमात पढ़ाते हैं, और ये हमेशा पहली सफ में ऐन उनके पीछे पहुंच जाता, ऐसा नमाज। एक दिन मगरिब की नमाज का वक्त आया, वो नमाज पढ़ाने आए, ये तो पहले से बैठा है पहली सफ में, एक नौजवान आया। हर दौर में हमारे यहां दो मर्जे एक लेवल के रहे, हर दौर चुनाच उनके बराबर के एक मर्जे और थे उस जमाने में। उनका बेटा आया और आने के बाद कहने लगा कि मेरे बाप की तबीयत बहुत खराब हो गई और बीमार चल रहे थे, बिल्कुल आखिरी वक्त है, उनका सांस उखड़ रहा। कहा ठीक है, नमाज मगरिबैन पढ़ा के आता हूं। चूंकि मर्जे वक्त है, मर्जे खुद खुदाम को हुक्म दिया कि मौला की जरी से बिल्कुल मुत्तसिल एक कब्र खोदी जाए, इतने बड़े मर्जे को यहां दफन करना। वो जरी उस वक्त छोटी थी, जब मौला की अब ये नई जरी आई है, वो जगह उसके अंदर चली गई। अब वो जरी के अंदर है कब्र, कब्र खुद गई, तैयार हो गई। इतनी देर में ईशा की नमाज खत्म हो गई, वही नौजवान आए, कहने लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई हो, तो बिस्तर पे उठ के बैठ गए, चलने लगे। और एक बार इसके गिरने की आवाज आई गुंडे के, लोगों ने मुड़के देखा, एकदम हार्ट अटैक हुआ, पहली सब में खड़ा है, मर गया। आगाए बुजुर्ग शिराजी ने कहा कि कब्र बिल्कुल ताजा तैयार है, इसको यहीं पर दफन कर दो, घुसलो कफन दे के जल्दी से, ये इसकी अब वो कब्र किसी को पता भी नहीं, शराबी जुआरी गुंडा बदमाश लोगों का हक मारने वाला, कब्र खुदी थी मर्जे के लिए, दफन हो गया ये शख्स सच्ची तौबा, और आज वो कब्र जरी के अंदर आ गई है। इसने इसने कौन सी ऐसी नेकी की जो हम लोग नहीं करते, नमाज पढ़ते इबादतें करते, इसकी वो नेकी कि एक बने हुए घर को टूटने से इसने बचाया, अपने आप को बर्बाद करके, यानी उस वक्त वो बना। अब ये बाकी बात कल करूंगा, ये बहुत बड़ी नेकी इस्लाम में मानी जाती है। और इसका उल्टा गुना भी इतना ही बड़ा है कि अगर कोई किसी बने हुए घर को तोड़े, गुनाहाने कबीरा में भी टॉप ऑफ द लिस्ट। जब आम घरों को तोड़ने और उजाड़ने वालों का अजाब इतना बड़ा, तो जिसने फातिमा के भरे घर को फुरात के किनारे उजाड़ा, फातिमा का भरा घर जो फुरात के किनारे उजड़ा, अब था कयाम कयामत कभी आबाद नहीं होगा। चाहे यहां मुराद कयामत कुबरा ले, चाहे मुराद कयामत सोगरा। अगरचे ये सारी सैदानियां बीबियां वापस मदीने पहुंच गईं, लेकिन बहरहाल मदीना फिर कभी आबाद नहीं हुआ। रबाब भी मदीना पहुंची, लैला भी मदीना पहुंची, फरवा भी मदीना पहुंची, जैनब भी मदीना पहुंची, कुलसुम मदीना पहुंच गई, लेकिन मदीना बहरहाल दोबारा आबाद न हुआ। अलबत्ता जिसे सबसे ज्यादा मदीना पहुंचने की बेचैनी थी, वही मदीना न पहुंच सके। जितने अरसे शाम के कैदखाने में ये लुटा घर रहा, कौन था जो बार बार इमाम जमाना से, इमाम वक्त से, सज्जाद से आके पूछता था कि हम मदीने कब जाएंगे? सवाल जैनब ने कितनी बार किया, ये सवाल रबाब ने कितनी बार किया, किसी ने नहीं किया। सवाल किया तो एक नन्ही बच्ची ने, जब भी बैठी होती एक बार मदीना याद आता है। बल्कि एक मर्तबा तो शाम का वक्त है, परिंदे उड़ते हुए घोंसलों की जानिब जा रहे हैं, नन्नी बच्ची पूछती है, भैया सज्जाद ये इतने सारे परिंदे कहां जा रहे हैं? कहा अपने घरों की जानिब जा रहे हैं। तो कहा भैया वो दिन कब आएगा कि हम भी अपने घर जाएं? सज्जाद इमाम वक्त है ना, जिसका दादा सलूनी कहे पोता भी सलूनी है, मगर हर सवाल का जवाब दे सकता है, सकीना के इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कैसे कहे कि बहन सकीना हम सब तो पलट के एक दिन जाएंगे, मगर तेरे मुकद्दर में मदीना नहीं है, तुझे तो इसे तारीख जिंदान में रहना। और वो बच्ची सारा दिन रोती है, सारी रात रोती है। आधी रात के बाद बच्ची सो जाती है, आधी रात के बाद, आधी रात तक रोती रहती है। और जब तक के बच्ची रोती है, यजीद को भी नींद नहीं आती। ये मातम की आवाज उसके महल से टकराती है। आधी रात के बाद वो भी सोता, आज पता नहीं कौन सी रात आई कि सकीना सो गई, सो गई। जब सकीना सोती है तो सारी बीबियां यहां सोती हैं, और यजीद और उसका घराना अपने महल में सोता। सोते सोते एक बार सकीना उठ गई, चारों तरफ देखा और कहा कि हाय मेरे बाबा कहां चले गए? अब बीबियां सो चुकी, जैनब की आंख खुल गई। एक बार करीब आई, सकीना बेटी तुझे पता है तेरा बाबा करबला में रह गया, आधी रात तक तूने मातम किया, दोबारा क्यों उठ गई? कहा फूफी अम्मा मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं, अभी जब मैं सोई थी तो ख्वाब में मैंने देखा मेरा बाबा आया है, अकेला नहीं आया है, मेरी दादी फातिमा को लेके आया है। मैंने पूछा था बाबा मुझे छोड़ के चले गए? बाबा ने कहा सकीना बेटी आज मैं और तेरी दादी तुझे लेने के लिए आए हैं। अभी तो मेरा बाबा वादा करके गया था। जैनब आलिमाए गैर मौलिमा फहीमाए गैर मुफहिमा, समझ गई कि इस जुमले का मतलब क्या है? घबरा के आवाज दी, ऐ लैला, ऐ रुकैया, ऐ कुलसूम, जरा जल्दी से बेदार तो हो जा, सुनो मेरी बच्ची क्या कह रही है। बीबियों ने सकीना को अपने घेरे में लिया और अब जो मातम शुरू हुआ। यजीद आधी रात के बाद बिस्तर पे लेटा था, घबरा के उठ गया, आज इस बच्ची को क्या हुआ है? क्या मेरी बाकी रात की नींद भी नहीं मिलेगी? जाओ और जाकर इसे खामोश कराओ। कनीजों ने हाथ जोड़ ली, कहा यही काम हमारे लिए मुमकिन नहीं, कैसे खामोश करा? तमाचे लगाए तो कहती है चचा पास, कोड़े मारे कहती है भैया भैया अली अकबर, और मातम बढ़ जाता है। यजीद ने कहा तो मुझे नींद कैसे आए? एक कनीज साहिब औलाद होगी, कहा कि एक तरीका है, वो बार बार कह रही है हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा, इसके बाप का कटा सर तेरे खजाने में है ना, वो सर भिजवा दे, शायद उसे देख के बच्ची को तसल्ली आ जाए। उधर सकीना जिंदान शाम में रो रही, बीबियों ने हल्के में लिया। एक बार सकीना खड़ी होकर दरवाजे की जानिब जाने लगी, दरवाजे की जानिब, जैनब ने घबरा के कहा सकीना कहां जा रही हो? कहा फूफी अम्मा मुझे बाबा की खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरा बाबा करीब आ गया है, मुझे बाबा की खुशबू आ रही है। जैनब ने पलट के देखा, कैद खाने का दरवाजा खुला, यजीद की कनीजें एक तश्त लेके आ रही हैं जिस पर कपड़ा पड़ा। जैनब के सामने यह तश्त रख दिया, जैनब ने घबरा के कहा यह क्या? का यजीद ने भिजवाया। जैनब ने हैरत से वो खान हटाया, सारी बीबियों की आंखों के सामने मेरे मजलूम आका का कटा सर नजर आ रहा। पहला अमल तो वही किया जो आप भी करेंगे, सारी बीबियां अपनी जगह से खड़ी हुई, कटे सर का रुख किया, पहले तो हुसैन की जियारत पड़ी, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका यबना रसूलल्लाह, आका इन कनीजों का सलाम लीजिए। और फिर जैनब आगे बढ़ी, भाई का कटा सर सकीना की गोद में दिया, सकीना ने बाबा के होठों पे होंठ रखे। मौर्रिख ने लिखा कि आज मंजर बदल गया, हमेशा हुसैन झुक के सकीना का बोसा लेते थे, आज बच्ची झुक के बाबा का बोसा ले रही। बाबा देख तेरे बाप तेरी सकीना पे क्या गुजरी, मेरे गोशवारे छीने का एक कान अब तक जख्मी है, रुखसार पे तमाचों के निशान हैं, बदन पे कोड़ों के जख्म हैं। एक बार फरियाद करते करते बच्ची रुकी, बाबा मैं तो अपने जख्म बता रही, तू तो मुझसे ज्यादा जख्मी नजर आ रहा। आवाज बंद हो गई, सकीना की आवाज बंद हो गई। जैनब घबरा गई, सज्जाद जरा देख मेरी सकीना को क्या हुआ। मेरा मौला आगे बढ़ा, खुदा किसी बड़े भाई को छोटी बहन की यह कैफियत ना दिखाए। एक बार सकीना का बाजू थामा, पलट के कहा फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरी माँ मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई। और बस बस गसाला को बुलाया गया, चीखे मारती भी वो बाहर आ गई, हाँ इस बच्ची पे तुमने कितना जुल्म किया, मोहम्मद की नवासी अपने जले हुए कुर्ते में, अपने लहू भरे हुए कुर्ते में दफन की गई, सकीना को कफन भी ना मिला। सज्जाद सकीना का नन्ना सा लाशा लेके आगे बढ़ा, जिंदा ने शाम खुदा आपको ले गया है, दोबारा ले जाए कब्र में, सकीना को उतारना चाहता है। एक बार फातिमा की आवाज आई, सज्जाद बेटा ला मेरी अमानत मेरे हवाले कर दे। अरे सकीना को लेने फातिमा आई, खुदा बंदा हुसैन की यतीमा सकीना के मसाए और शहादत का वास्ता, और मेरे मजलूम आका सज्जाद के इस इम्तिहान का वास्ता, जो मोमिनीन और मोमिनात आज के मजलिस में है, इनको इनके बच्चों को इनके घरों को इनके घर वालों को हर आफतों परेशानी से महफूज फरमा। लेकिन खुदा वंदा جو صاحبان ایمان مرد اور عورتیں آج کے مجلس میں حاجت مند ہیں، کوئی حاجت لے کے آئے ہیں، تجھے حسین کی سکینہ کا واسطہ، ان کی ساری حاجتیں فوراً قبول فرما خدا بندہ. دنیا بھر کے مظلوم صاحبان ایمان کی مدد فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.